शांति। बाबा ने हम बच्चों को अथाह ज्ञान दिया है, है ना? और उस अथाह ज्ञान के अंदर से समय प्रति समय हमें इन बच्चियों के माध्यम से कुछ ऐसे रत्न मिल जाते हैं जो हमारे पुरुषार्थ में सहज भी होता है और उपयोगी भी सिद्ध होता है। वैसे रेणु बेन ने जो बताया कि मैनेजमेंट के अंदर हम स्मार्ट गोल देते हैं, लेकिन वो एक वर्कशॉप की रीति से हम तो कराते थे और उसका मैं क्वेश्चन आदि लाई तो नहीं हूँ यहाँ पर। हाँ तो आप आओ ना, फिर यहीं बैठो। अच्छा, पहले सत्र कला करा दे। तो उसमें जो है कुछ स्मार्ट गोल के लिए कि कहाँ हमारी वीकनेस है और उस वीकनेस को भरने के लिए जो पुरुषार्थ है उसके लिए, जैसे आप यहाँ 3 दिन आए हैं तो 3 दिन में उस पर कैसे फोकस करके उसको ठीक करते हैं। वैसे मैं क्वेश्चंस लाई तो नहीं हूँ और काफी समय हो गया मुझे अभी छोड़े हुए, है ना? क्योंकि जैसे बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। तो इसी तरह जब सेल्फ मैनेजमेंट कराते थे, काफी वक्त हो गया उस बात को, और उसके बाद जब से हमने गीता रामायण आदि शुरू किया तब से मन के अंदर यही भावना आई कि मैनेजमेंट का लेसन जो है अभी छोटी छोटी बहनें बहुत अच्छा कराती है तो हम आगे बढ़े तो वो कराएंगे, हम ही कराते रहेंगे तो वो कभी आगे नहीं आएंगे। इसलिए इनको सौंप कर हम तो आगे गीता के भगवान के ऊपर बढ़ गए और उसी पर सारा फोकस हो गया हमारा। इसलिए वो बातें काफी विस्मृत भी हो गई है, लेकिन रेणु बेन आपको जरूर कराएगी, है ना? लेकिन जैसे कहा कि आज का जो सब्जेक्ट है पुरुषार्थ के लिए, और ये सब्जेक्ट है बेसिक सब्जेक्ट, आत्म अभिमानी बनने के लिए या देही अभिमानी बनने के लिए बाबा लगभग हर रोज हम बच्चों को मुरली में इशारा देता है, क्योंकि सारा पुरुषार्थ का आधार ही यही स्थिति है। जब तक ये स्थिति पक्की नहीं होगी तो हमारे कदम आगे बढ़ नहीं सकेंगे, या जो अनुभव करना चाहते हैं हम वो अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो इस बात की क्लैरिटी जरूर चाहिए कि देही अभिमानी स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति क्या चीज है। मुरली में तो ये शब्द हम सुनते ही रहते हैं, है ना? लेकिन उसमें दोनों बात बाबा कहते हैं। कभी बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो बच्चे, कभी बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। अब दोनों एक ही है या अलग है? हाँ, अलग अलग है, दो शब्द है तो अलग अलग है। तो देही अभिमानी किसको कहेंगे, आत्माभिमानी किसको कहेंगे? क्या एक एक करके बोला? हाँ, देह और देह के सब संबंधों को भूल करके बाबा को याद करना, उसको क्या कहेंगे? देही अभिमानी कहेंगे, आत्माभिमानी कहेंगे? उसको आत्माभिमानी कहेंगे। देही अभिमानी किसको कहेंगे फिर? अच्छा, और कर्म करते हुए देह से न्यारे होना, उसको कहेंगे देही अभिमानी। अच्छा, कर्म करते देह से न्यारे कैसे हो सकेंगे? अच्छा, देह भान से न्यारा हो जाना। और बाबा की याद में रहना। अच्छा, अगर मैं आपको ये पूछूं, देह अभिमान किसको कहते हैं? भाई, कोई व्यक्ति के अंदर अभिमान जब होता है और हमें दिखाई देता है ना, अक्सर हम लोग बात कर लेते हैं ये व्यक्ति बड़ा देह अभिमानी है, तो ऐसा क्या किया उसने जो हमने उसको ये लेबल दे दिया, ये देह अभिमानी है? मैं और मेरापन आ गया, और अहंकार में क्या आता है? हाँ, क्या हुआ? अपने से अलावा दूसरे किसी को कुछ नहीं समझना। अच्छा, और हर बात में क्रोध है। अच्छा, और क्या होता है देह अभिमानी व्यक्ति के अंदर? और क्या होता है? मान शान होता है। और भी कुछ होता है? मान शान वो मांगेगा तो नहीं, तो ऐसा कौन सा उसका बिहेवियर है जिससे हमें पता चला कि इसको मान शान चाहिए? हाँ, घूरना, हाँ, रूठना, शो ऑफ करना। और भी देखो, देह अभिमानी व्यक्ति जो होता है, जो हमें दिखाई देता है, भले अभी हम उसको अच्छी तरह से व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो देह अभिमान में होता है तो उसके दृष्टि, वृत्ति, सोच, बोल, हर चीज के अंदर कोई ना कोई विकार का प्रवाह होगा, या ईर्ष्या का होगा, या द्वेष का होगा, या क्रोध का होगा, रूठने का होगा, या अपने आप को बड़ा सिद्ध करने का होगा, चाहे किसी भी इंद्रिय से वो प्रवाह महसूस होता है ना, वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो महसूस होने लगता है, चाहे उसके दृष्टि में, भले वो शब्द भी ना बोले, लेकिन उसके देखने का नजरिया ऐसा होगा तो लगता है बड़ा देह अभिमानी व्यक्ति है, देखो दूसरे की अच्छाई उससे देखी नहीं जा रही है, है ना? अच्छा, या तो वर्णन करता है, वो दूसरे की निंदा करता है, ग्लानी करता है, तो तीसरा देखने वाला क्या कहता है? हाँ, कितनी ईर्ष्या भरी पड़ी है, सामने वाले की अच्छाई देख नहीं पा रहा है ना, इतना देह अभिमानी, अपने आप को ही पता नहीं क्या समझता है, दूसरा कोई अच्छा है ही नहीं, तो वो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसके जो हाव भाव है ना, उसकी जो सोच है, जब वो सोच भी व्यक्त करता है तो भी हमें महसूस होता है बड़ा देह अभिमानी है। तो जहां भी कोई ना कोई कर्मेंद्रिय के द्वारा कोई ना कोई विकार की बू आती है, जिसको कहे एक ऐसी ऐसा प्रवाह महसूस होता है, उसको देख करके व्यक्ति कहेंगे बड़ा देह अभिमानी है ना। तो तो देही अभिमानी किसको कहेंगे? हाँ, तो देही अभिमानी का मतलब है कि जैसे देह अभिमान, देह अहंकार जो होता है उसमें व्यक्ति जैसे अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाता है, देह अभिमान में जो होता है तो उसमें जैसे देह में रहते हुए ये बुराइयों का प्रवाह उसमें से महसूस होगा, वाइब्रेशन आएगा, है ना? लेकिन उसमें वो देह समझ रहा है और देह समझता है, इसीलिए ये जैसे विकारों की बू उसके अंदर से या उस वाइब्रेशंस में हम महसूस करते हैं। लेकिन जब देही अभिमानी व्यक्ति होता है तो देह से परे, देही यानी आत्मा है। लेकिन जब हम बच्चे कर्म करते हैं उस समय हम कर्मेंद्रिय से न्यारे नहीं हो सकते, उस भान से भी न्यारे नहीं हो सकते, क्योंकि ये कर्मेंद्रिय से हमें कर्म करना है। तो भाई इस वक्त मुझे अपने पैर चलाने हैं, इस दिशा में ले जाना है, यहां जाना है, सेंटर जाना है ना? या मेरे हाथ को जब मैं सेवा के कोई कार्य करते हुए यूज करती हूं तो भाई अभी ये चीज यज्ञ का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो हाथ को प्रयोग करते हैं ना, लेकिन उस समय ये नहीं कहेंगे कि हाँ आत्माभिमानी स्थिति है, क्योंकि देह की कर्मेंद्रिय का भान है लेकिन उस कर्मेंद्रिय को मालिक बन के प्रयोग कर रहे हैं, कि जहां ये फीलिंग आती है मैं मालिक हूं, ये मेरी कर्मेंद्रियां हैं और ये कर्मेंद्रिय के द्वारा मुझे ये सेवा करनी है, किसी को दृष्टि देनी है, कोई वचन बोल रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं, कोई ज्ञान की बातें हो या दूसरी कोई बातें हो, लेकिन शुभ भावना से संपन्न हो। तो जहां कोई ना कोई इंद्रियों के द्वारा गुणों की महक आती है, सद्गुणों की महक आती है, क्योंकि जब व्यक्ति देही अभिमानी होगा तो नम्रता, मधुरता, वो गुणों की महक उसके कर्मेंद्रिय से वाइब्रेशंस आने लगेंगे कि हाँ भाई बड़ा मधुर बात करता है ये व्यक्ति, है ना, बड़ा निर्माणचित है। तो वो कर्मेंद्रिय का प्रयोग कर रहा है, लेकिन जब देह अभिमान में थोड़ा सा डिफरेंस है, देह अभिमान में है तो वाइब्रेशन नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन जब देही अभिमानी है तो वाइब्रेशन पॉजिटिव आएगा। तो जहां मालिक बन करके कर्मेंद्रिय का प्रयोग कर रहे हैं और उस समय आत्मा के सातों गुण का प्रवाह हमारे हर कर्म से लोगों को महसूस हो, है ना, शांति, जैसे बाबा के बच्चे कभी कभी आप देखो अनाज सफाई कर रहे हैं, शांति से बाबा की याद में कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, बाबा की याद भी है, ये नहीं कि उसमें कीड़े जा रहे हैं, पत्थर जा रहे हैं, ऐसा सफाई नहीं होता है, लेकिन एक्यूरेट सफाई है, ध्यान भी दे रहे हैं, कोई कंकड़ कीड़ा कुछ नहीं जाना चाहिए, बाबा की याद भी है और इतना शांति से कर रहे हैं कि वो शांति का प्रवाह जैसे फैल रहा है, तब देखने वाला कहता है बड़ा ये योगयुक्त होकर के कर्म कर रहा है या देही अभिमानी स्थिति में कर्म कर, उसको कहते देही अभिमानी स्थिति, कि जहां देह की कर्मेंद्रियों को यूज करते हुए भी जो आत्मा के सात गुण है उसका प्रवाह हर कर्मेंद्रिय के द्वारा फैल रहा है, ये देही अभिमानी स्थिति। अच्छा, और आत्मा अभिमानी किसको कहते हैं? जब बाबा कहते बच्चे आत्मा अभिमानी बनो, तो आत्मा अभिमानी कब बनना है? कर्म करते आत्मा अभिमानी नहीं बनेंगे आप, योग के समय, कि जब हम सारे कर्म से निवृत्त हो गए और जैसे खास ये भट्ठी में आकर के बैठे हैं या योग में बैठते बाबा के कमरे में बैठते हैं उस समय कर्मेंद्रिय को भी समेट लेते हैं और कर्मेंद्रिय से अपने आप को डिटैच कर लिया उस वक्त ये देह की स्मृति भी न रहे, देह की स्मृति से भी परे हो जाए और सिर्फ आत्मभाव जागृत रूप में हो और मैं आत्मा हूं इसी शुद्ध भाव में हम अपने आप को स्थित कर देते हैं, देह भी याद नहीं आ गए। जब इस भाव में अपने आप को स्थित कर देते कि मैं आत्मा हूं तो आत्मा के जो सातों गुण है वो सातों गुणों का स्वरूप बन जाना और जब सातों गुणों का स्वरूप बन करके बैठे हैं तो वो प्रवाह जो है हमारे चारों ओर एक प्रकार की लाइट को प्रवाह फैलाती है। सातों गुणों की लाइट्स जो है ना, सातों गुणों के रंग बिखेरती है, जैसे वो लाइट को बिखेरती है, वो वाइब्रेशन को बिखेरती है, उसको कहेंगे आत्म अभिमानी स्थिति। तो जितनी हमारी आत्म अभिमानी स्थिति की अभ्यास करने की आदत होगी, आत्म अभिमानी होकर के हम अभ्यास करते हैं योग में बैठते हुए, तो देही अभिमानी बनना आसान हो जाएगा। अगर हम योग में जब बैठे हैं उस समय भी आत्म अभिमानी नहीं है, देह और देह की दुनिया की ही बातें अंदर में चल रही है, तो योग में से उठने के बाद भी वो प्रवाह इतना हमें बॉडी कॉन्शियसनेस में ले आता है कि देखने वाला, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी हरकत होगी जो एकदम बॉडी कॉन्शियस की हो जाएंगे या जोर से बोलेंगे अरे क्या कर रहे हैं, है ना। तो जैसे ये बोला तो व्यक्ति कहेगा, दूसरा देखने वाला, योग क्या कर रहा था। माने योग के प्रवाह से अगर बाहर आया तो वो रहना चाहिए ना, कुछ क्षण तो कुछ समय तक वो प्रवाह रहना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आते ही व्यक्ति एकदम योग में से उठ के आया और बाहर आया और किसी ने कोई ऐसी हरकत की, ऐसी बात की, उसको गुस्सा आ गया, तो इसका मतलब जब योग में बैठा था तो आत्म अभिमानी था ही नहीं। उस समय भी उसकी बाहर में बुद्धि घूम रही थी, दुनिया में, देह और देह की दुनिया में ही बुद्धि घूम रही थी। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे जब योग में बैठो तो देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, अपने को आत्म समझ, मुझ बाप को याद करो। ये पूरा सेंटेंस है योग के लिए कि देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, अपने को आत्म समझ, मुझ बाप को याद करो या मुझ बाप के साथ बुद्धि का योग लगाओ, है ना। आत्म समझ माना कि आत्मा समझा नहीं है क्या, जानते हैं ना, पहले दिन हमें जब कोर्स किया तब आत्मा का लेसन मिला तो समझ लिया ना कि हाँ भाई ब्रह्मा कुमारी की फिलॉसफी ये है कि यहाँ पर आत्मा समझते हैं। फिर बाबा बार बार ये क्यों कहता है कि आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। आत्म समझना माना मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये रटना नहीं है। आत्म समझना माना अपने आप को अंतर चक्षु से उस स्वरूप में देखना, क्योंकि जब देखते हैं तब समझा जाता है। देखो आज मेरे सामने कोई मशीन है, मुझे मशीन चलाना नहीं आता है, लेकिन मेरे सामने रख दिया है मशीन। अब मशीन को देख करके मैं अनुमान लगाती रहूंगी, ऐसा करना होगा, ये करना होगा, ये चलाना होगा, ऐसा चलाना होगा, 10 बार सोचती हूँ, है ना। डर भी लगता है कहीं कोई उल्टा सीधा बटन दब गया और नुकसान न हो जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आकर मुझे डेमोन्स्ट्रेट करता है कि पहले ये बटन दबाना, फिर ऐसा करना, फिर ये करना, फिर ये कर, और उसके बाद ऐसे बंद कर देना, देखने के बाद मैं क्या कहूंगी, अब समझा, अब समझा। तो समझा कब? जब देखा। जब तक देखा नहीं तब तक समझा ही नहीं। तो इसी तरह बाबा भी कहते हैं अपने आप को आत्मा समझो। आत्मा समझो माना अंतर चक्षु से स्वयं को देखो, क्योंकि जैसे ही देखते हैं वैसे ही समझ करके उस स्वरूप में बैठना आसान होगा। जब तक उसको देखेंगे नहीं तो क्या होगा? तब तक अंतर चक्षु बाहर की चीजें देखती रहेंगी, क्योंकि कुछ तो चाहिए उसको देखने के लिए। आत्मा को नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे? मित्र संबंधी, घर, दुकान, सब यही देखेगा। कुछ तो देखेगा ना। जब मन हमारा बाबा में नहीं लगता है, बाहर भटकता है, तो उस समय क्या देखता है वो? या दुकान को देखा, कारोबार को देखा, घर को देखा, बच्चों को देखा, कुछ तो देख रहा है, कुछ तो देख रहा है। और उसी को देख देख करके संकल्प चलता है और उतने में सफेद लाइट हो जाती है। कहते हैं इतना जल्दी योग पूरा भी हो गया। और जब उस चीज को देखते हैं ना तब आपको नींद आती है? तब नींद आती है? नहीं आती है। नींद कब आती है? योग में नींद कब आती है? जब वो भी देखना बंद कर दिया और ये भी नहीं देख रहे हैं, न आत्मा की बातों को देख रहे हैं न दुनिया की बातों को देख रहे हैं, तो नींद आना स्वाभाविक है। इसीलिए नींद आती है, इसीलिए झुटके आते हैं। जब तक दुनिया की चीजें देखते रहेंगे ना नींद नहीं आएगी। इसी तरह जब बाबा कहते हैं आत्मा समझो माना अंतर चक्षु से आत्मा को देखो, और जैसे ही देखेंगे, जैसे कहा दुनिया की चीजों को देखते, कारोबार को देखते, दुनिया दुकान को देखते, घर को देखते, बच्चों को देखते, तो जैसे उसको देखते हैं कि उसके बारे में संकल्प चलना शुरू होता है ना। इसीलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को एक बात कहता है, मुरली के अंदर हर रोज ये बात आती है, बच्चे मन मना भव। मन मना भव कहते हैं ना, मन मना भव का अर्थ क्या है? हा? मन को मुझ में लगाओ। और दूसरी ओर बाबा कहता है देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, अपने को आत्म समझ, बुद्धि का योग मुझ बाप के साथ जोड़ो, है ना। अब पहले दिन जब हम बाबा के घर में आए हमको ये स्पष्ट नॉलेज मिली कि आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार, है ना। अब मन जो है वो है आत्मा की सोचने की शक्ति का दूसरा नाम, विचार चलते हैं वो मन के अंदर चलते हैं, और बुद्धि है निर्णय करने की शक्ति। खाली निर्णय करती है क्या? नहीं है, विजुअलाइज करती है। बुद्धि जो है वो देखती है। अब मन और बुद्धि दोनों अलग है। पहले बाबा में किसको लगाएंगे, मन को लगाएंगे या बुद्धि को लगाएंगे? सोच के जवाब देना मेरे को। बुद्धि को लगाएंगे। अच्छा, कितने लोग कहते हैं मन को लगाएंगे? जरा हाथ खड़ा करो, मन लगाने वाला। अच्छा, जो लोग कहते हैं बुद्धि को लगाना है वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, फिर से मन लगाने वाला। अच्छा, 50-50 है, मतलब माना कंफ्यूजन है ना, और किसी ने तो किसी में नहीं उठाया, क्या पता नहीं कहां कौन सा सही है मालूम नहीं है। लेकिन कहने का भावार्थ ये है कि मन और बुद्धि दोनों लगाना है, लेकिन पहले किसको लगाएंगे, कौन किसको फॉलो करता है? मन बुद्धि को फॉलो करता है, बुद्धि मन को फॉलो करती है। देखो कन्फ्यूज, अभी योग कहां से लगेगा, यही क्लियर नहीं है। पहले किसको लगाना है, अब गलत जोड़ देंगे, वायर भी गलत जोड़ेंगे तो कहां लाइट होगी? हाँ, अच्छा, जो कहते हैं मन लगाना है, मन को कैसे लगाना होता है? कोई चीज तो नहीं है जो ये उठा करके लगा दिया, है ना? अब मन को लगाना माना क्या? मन को लगाना मतलब कैसे लगाएंगे मन को? हाँ, क्या करेंगे समर्थ संकल्प में? क्या करेंगे? मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, शिव बाबा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर, लग गया है? अच्छा, जो कहते बुद्धि को लगाना चाहिए, तो बुद्धि को कैसे लगाएंगे? बुद्धि को कैसे लगाएंगे? कहा ना, कोई चीज नहीं है जो उठा करके जोड़ दिया वहां पर, लग गया, ऐसा तो है नहीं, एक प्रोसेस है। तो बुद्धि को लगाने का मतलब क्या हुआ? हाँ, विजुलाइज करेंगे। क्या विजुलाइज करेंगे? आत्मा को विजुलाइज करेंगे। और क्या विजुलाइज करेंगे? बस आत्मा को देखते रहेंगे ऐसा, और लग गया? नहीं, देखो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि घर में मानो दो बच्चे होते हैं ना, दो बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। अब एक बड़ा है, एक छोटा है, एक साल का अंतर है दोनों के बीच में। बड़े बच्चे को आप कुछ नहीं कहो, उसको फ्री छोड़ दो, लेकिन छोटे बच्चे को आप कहो कि तू बैठ यहां मेरे बाजू में बैठ और पढ़ाई कर, होमवर्क कर, है ना? अब वो बड़े को फ्री छोड़ दिया, उसके पास कोई खेलने वाला नहीं है, तो वो क्या करेगा? इधर उधर घूमेगा थोड़ा, जब कोई नहीं है तो कोई खिलौना निकालेगा, और जो छोटा आपको बाजू में बिठा करके रखा है, उसको होमवर्क कर रहा है, उसको दूर से दरवाजे के पीछे से खिलौना दिखाता है, दिखाता है, ऐसे खाली दिखाता है। ये छोटा क्या करेगा? होमवर्क कर रहा है, वो खिलौना देख रहा है ना? आपको देखेगा, आपका ध्यान किसी से फोन में बात कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, या कुछ खाना बनाने में ध्यान है, तो क्या करेगा? धीरे धीरे सरकेगा, थोड़ा सरकेगा, आपका ध्यान नहीं गया तो थोड़ा और सरकेगा, थोड़ा और सर, फिर जैसे देखा मौका मिला भागा। अब जैसे ही आपका ध्यान, अरे वो कहाँ चला गया? हाँ, होमवर्क करना करते करते कहाँ भाग गया? फिर उसको ढूंढो, फिर उसको कहो इधर तुम बैठ, इधर बैठ, बैठ इधर, बिठा दिया उसको जबरदस्ती, चलो लिखो, 1 2 3 लिखो, ये लिखो, वो लिखो, है ना? बड़े को अपने फ्री, तुमको जो करना है तुम कर, है ना, इसको डिस्टर्ब नहीं कर, तुम जाओ। अब उसके पास कोई खेलने वाला नहीं है तो क्या करेगा? तो फिर वो खिड़की के पीछे खड़ा होकर के इसको फिर दिखाता है कुछ। अभी दूसरा कोई बॉल बैट दिखाया उसको, बॉल बैट दिखाया, तो फिर ये धीरे 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 इसका मन भागता है, जाऊं मैं, जाऊं मैं, जाऊं, फिर सरकते सरकते भाग गया, है ना? अरे आपको सिंपल बात ये है कि अगर छोटे को बिठाना है, पढ़ाना है, तो बड़े को भी बिठाओ ना, उसको भी बिठाओ, वो बैठेगा, दोनों बैठेंगे तो लगेंगे, एक को फ्री छोड़ देंगे तो कभी लगने वाले नहीं है। इतना लॉजिक, इतना तो हम सभी जानते हैं, सभी आप लोग गृहस्थ में रहे हैं, सभी का ये अनुभव है कि नहीं? ठीक इसी तरह हमारे भी दो बच्चे हैं, एक मन, एक बुद्धि। अब बुद्धि बड़ा बेटा है और मन छोटा है। अब हम मन को बार बार कहते हैं, तू लग बाबा में लग, लग बाबा में लग, है ना? मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, लगा संकल्प देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। अब बुद्धि को फ्री छोड़ दिया, अब बुद्धि को फ्री छोड़ दिया, बुद्धि क्या करेगा? फ्री है, उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं है, तो क्या करेगा? वो मन को खिलौने दिखाता है, कौन सा? कभी घर दिखाएगा, कभी कारोबार दिखाएगा, कभी बच्चे दिखाएगा, कभी कोई दुकान दिखा देगा, कभी अलमारी दिखा देगा, कभी कोई काम भूल गया वो दिखा देगा, अरे फलाने व्यक्ति को तुमको बोलना भूल गया। अब वो मन को ये खिलौने दिखाता रहता है, अब इसका मन बाबा में लगाने के लिए हमने बिठाया, बैठ तुम मन लग बाबा में, लग लग बाबा में, लग जोर दे रहे हो उसको, है ना। अब उसका ध्यान उधर जा रहा है, वो खिलौना दिखा रहा है, जो थोड़ी देर में आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ चलेगा, बाबा को देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं। हाँ, पांच स्वरूप में फरिश्ता हूँ मैं, निराकार स्वरूप हूँ मैं, देवता स्वरूप हूँ, कर लिया, घुमा दिया, है ना। और उसके बाद क्या करेगा, संकल्प दे दिया, समर्थ संकल्प दिए, लेकिन बुद्धि जो फ्री है वो खिलौने दिखाती रहती है ना, तो इसीलिए जो है वो मन भाग जाता है। जैसे ही मौका देखा आपका ध्यान नहीं है, भाग गया, और भाग गया, अरे फलाने व्यक्ति को ये बात कहनी तो रह गई, जैसे उसने वो व्यक्ति दिखाया तो उसके पीछे संकल्प चलने लगा कि ये व्यक्ति को ये मैसेज देना था, वो तो रह गया। फिर सोचते चलो कोई बात नहीं, योग से उठेंगे ना, उसको पहला मैसेज कर देंगे, ये करेंगे। फिर दूसरी कोई बात याद आ गई, उससे संबंधित कोई बात याद आ गई, और उसी में कितना टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता, सफेद लाइट हो गई, है ना। कहते पता नहीं, ये मन योग में जो है ना, मन लगता नहीं है, बार बार भाग जाता है। अब क्यों नहीं लगता है, अरे मन को लगाना है तो पहले बुद्धि को बिठाओ ना, पहले बुद्धि को बिठाना। इसलिए हमारा योग बुद्धि योग है, और बुद्धि योग के लिए पहला यही है, अपने को आत्मा समझ, बुद्धि का योग मुझ बापसिल। क्योंकि बुद्धि क्या चीज है, बुद्धि है आत्मा के चक्षु, बुद्धि के पास ही चक्षु है जो देखता रहता है, 10 चीजें इधर उधर देखता रहता है। इसीलिए पहले उसको बिठाओ और उसको अच्छे अच्छे दृश्य दो। इसीलिए बाबा कई बार कहते बच्चे अगर योग नहीं लगता है ना, तो मधुवन को भी याद करो, ये चार धाम को याद करो, ये भी योग लगेगा। क्योंकि जैसे ही ये इमेजेस देखना चालू किया आप, कि बाबा के कमरे में जा रहे हैं, बाबा के झोपड़ी में जा रहे हैं, वहां बैठ के बाबा से रूहान करके, तो क्या होगा कि ये देखेंगे बुद्धि, बुद्धि को एक चित्र दे दिया ना आपने, तो फिर दुनिया के चित्र देखने की उसको इच्छा नहीं होती है। इसमें बिजी कर दो, कोई भी चित्र दो। कभी बाबा कहते हैं साकारी आकारी निराकारी दुनिया में आना जाना करो, कभी बाबा कहते फरिश्ता रूप में देखो अपने आप को, कभी बाबा कहते निराकारी दुनिया में चले जाओ, कभी बाबा कहते पांच स्वरूप को घुमाओ, माना एक एक स्वरूप को देखो, महसूस करो उस स्वरूप में अपने आप को। और जैसे ही आप देखेंगे तो मन अपने संकल्प अपने आप उस तरफ चलने लगेगा, जिस तरह दुनिया की कोई भी चीज देखने के बाद संकल्प अपने आप चलता है, सोचना नहीं पड़ता है, अब क्या सोचूं ये नहीं होता है। इसी तरह जैसे ही ये संकल्प ये दृश्य देंगे तो ये दृश्य के साथ संकल्प अपने आप चलने लगेगा कि आज बाबा ने क्या कहा। आज जैसे बाबा ने कहा मुरली के अंदर कि बच्चे साइलेंस का स्वरूप ऐसा हो कि कोई आत्मा दूर बैठे हुए भी उसको महसूस होगा कि ये मेरे को रास्ता बता के गया, ये मुझे मार्गदर्शन दे करके गया, है ना। कहने का भावार्थ कि अपने आप उस स्वरूप को देखते, आप जैसे उस स्वरूप में स्थित होते और इतने समर्थ संकल्प शुरू होंगे, उस भाव में अपने आप को जैसे ले जाएंगे और उस भाव में अपने आप को स्थित कर देंगे, तो बाबा के साथ का जो योग है वो सहज हमारा जुड़ेगा, क्योंकि उससे संबंधित बातें ही याद आएंगी, मन विचार उसी से संबंधित चलाएगा। तो जैसे ही वो मुरली की बातें अगर स्मृति में आई, मुरली की पॉइंट स्मृति में आई, बाबा याद आने लगता है, बाबा में बाबा को हम देखते जाते हो और बाबा से जैसे वो मधुर मिलन मनाते जाते हैं, है ना, और इस तरह से उसमें खो जाएंगे कि कब सफेद लाइट होंगी, उस प्रवाह में रहेंगे, और ऐसा उस प्रवाह में रहेंगे कि आपको मन ही नहीं करेगा मैं किसी से बात भी करूं, है ना। इतना आत्म अभिमानी स्वरूप हमारा पक्का हो जाएगा, ऐसा पक्का। और उसके बाद अगर आप कर्म में भी जाएंगे ना, तो भी वो प्रवाह चलता रहेगा, वो प्रवाह साथ साथ चलता रहेगा, वो अनुभूति का प्रवाह ऐसा रहेगा कि देही अभिमानी बनकर के ही आप कर्म करेंगे, कि उस समय आप किसी के साथ जोर से बात नहीं, कोई कुछ कहता भी है आपको नहीं अच्छा लगा, आप फिर साइलेंस में चले जाएंगे, उसको उसके साथ फालतू बहस करने के बजाय आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि आपको वो प्रवाह ऐसा खींच रहा है। तो उसको कहते, और उसमें कर्म में आए भी देही अभिमानी होकर के आप कर्म करते जाते हैं, ये है देही अभिमानी। जब कर्म में आए, जब कर्म से निवृत्त होकर के बैठे, तो उसको कहते आत्म अभिमानी स्थिति। और वो जब जितना पक्का हो जाएगा, उसी के बीच में रहने का जो पक्का हो जाएगा, ये स्टेज हमारी पक्की हो जाएंगी, उसके बाद आगे की जो स्टेजेस है फरिश्ता स्वरूप बनना, क्योंकि जब तक देही अभिमानी नहीं बनेंगे, फरिश्तापन के अनुभव को भी करना बहुत मुश्किल है, या अशरीरी स्थिति का अनुभव करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए बेस यही है, जब तक ये बेस, ये फाउंडेशन हमारा मजबूत नहीं हुआ, तब तक हम ऊपर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और इसीलिए योग में जब बैठते हैं, तो भाई जब मन बुद्धि दोनों थक जाते हैं, बुद्धि बाहर ले गई मन को, फिर याद आया अरे योग में बैठे, फिर आ गए, फिर मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ किया, हाँ समर्थ आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ मैं, आज का स्वमान याद किया, ये याद किया, स्लोगन याद कर ली, ये याद कर लिया, फिर वापस बुद्धि कोई और खिलौना दिखा दी, फिर भाग गया, फिर लेके आए, फिर भागा, फिर लेके आए, उसमें थक जाता है ना। अब छत थक जाएगा तो क्या करेगा बच्चा, सो जाएगा। तो मन बुद्धि दो बच्चे हैं। अब बच्चा थक गया, बार बार उसको खींचा तानी करते लो, इधर लाओ, इधर जाओ, इधर लाओ, वापस भागता है, वापस ले आओ, वापस जाता है, वापस, कितना थक जाता है। आप लोग अनुभवी है ना माताएं, तो बच्चे को हा? बाहर से खींच कर ले आओ, फिर वो भाग जाता, फिर खींच के कितना उसके साथ आप भी थकेंगे और वो भी थकेगा, और वो थकने के बाद सो जाएगा। तो थक गए, थकने के बाद हम भी सो जाते हैं, इसलिए हम फिर योग कहते, योग में नींद बहुत आती है, योग में नींद इसीलिए आती है। लेकिन अगर हम मन और बुद्धि को इधर उधर खिंचातानी में करने के बजाय एक बात में उसको लगा दे, कोई ना कोई दिव्य स्वरूप, चाहे तो चार धाम की यात्रा करो, चाहे तो साकारी आकारी निराकारी स्थिति में आना जाना करो, कभी पांच स्वरूप का। इसीलिए बाबा जब ड्रिल कराते थे ना अव्यक्त बाबा, तो ड्रिल में यही बाबा ड्रिल हमसे कराते थे पांच स्वरूप की, कि देखो अपने आप को ऐसा, यही योग है। और उस योग में खाली देखना नहीं, महसूस करना है, फील करना है, और उस फील करने के साथ साथ संकल्प इतने आहिस्ते चलेंगे कि उसको फील करते हुए कुछ देर तक हम उसमें जैसे समा जाते, खो जाते हैं, फिर दूसरा संकल्प आता है, फिर समा जाते हैं उसमें, फिर तीसरा, एक एक चीज का अनुभव करेंगे। अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे, कई लोग कहते हैं बहन जी हमको तो अनुभव होता ही नहीं है। वास्तव में देखा जाए अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं। आप जैसे यहाँ आए हो मधुबन, ये दिन तो बहुत अच्छे हैं, है ना। लेकिन मान लो कि आप दिसंबर जनवरी में आओ, कि जिस समय माइनस टेम्परेचर जाता है, कभी कभी माइनस टू थ्री तक भी चला जाता है, जब इतना टेम्परेचर में आओ आप, और सुबह उठो और नहाने के लिए जाओ और बाथरूम में गर्म पानी नहीं आता हो, और ठंडा पानी की बाल्टी भरी पड़ी हो, गर्म पानी नहीं आ रहा है, क्या करेंगे। पानी देखा भाई रात का भरा हुआ है, और सुबह तक तो कितना बर्फ जैसा ठंडा हो गया होगा, मैं उसको महसूस ही कर लिया, सोचने से ही ये महसूस हो गया कि रात भर का रखा हुआ ठंडा पानी कितना ठंडा होगा, इसको डालेंगे तो क्या होगा, देख लिया, बिस्तर पकड़ लेंगे, क्या किया, फिर से बाहर आ गए, कमरे में दूसरे भाई ने पूछा क्या हुआ, स्नान कर लिया? कहेंगे नहीं नहीं, गर्म पानी नहीं आ रहा है। अरे पर ठंडे पानी की बाल्टी तो रखी है ना, उसी से कर लो। तो क्या कहेंगे, मरना है क्या? सीधा ही कहेंगे ना, मरना है, क्योंकि देख लिया कि बिस्तर पकड़ लेंगे, टाइफाइड हो गया, कुछ भी हो जाएगा। इससे तो बेहतर है कि नहीं स्नान करो, जब तक वेट करे गर्म पानी जब तक आए तो, है ना। और जैसे ही ये बात आपने सोची अंदर में खड़े होकर के, इतना ठंडा पानी है उसको डालने से तो जरूर मैं बीमार पड़ जाऊंगा, और ये सोचते ही एक ऐसी सिहरन दौड़ती है, करंट दौड़ती है, ठंडी की करंट दौड़ती है, और बाहर आ गए। और आपने कहा मरना है क्या मुझे, कहने का भावार्थ ये है इतना ठंडा है कैसे उसको डालेंगे, है ना। अब वो व्यक्ति आपको कहता है हाथ तो लगाया नहीं, कैसे पता चले इतना ठंडा है? आप क्या कहेंगे, हाथ लगाने की जरूरत है क्या? हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, समझ सकते हैं। समझा कैसे, समझा कैसे, हाथ भी नहीं लगा कैसे समझा ठंडा पानी है और डालेंगे तो मर जाएंगे? समझा कैसे, देखने से समझ में आ गया, देखा और समझ में आ गया, है ना। तो आत्मा समझो माना, देखने से समझ में आता है ना, यानी फील करो। जैसे वो पानी देखा और फील किया, अनुभव किया कि सिहरन दौड़ गई एकदम, उन संकल्पों से ही एक करंट दौड़ जाती है, अनुभव हो गया, और आप बाहर आकर कहते हैं अनुभव हो गया बहुत ठंडी है, ये ठंडी में ये पानी तो नहीं डाल सकता हूं मैं, है ना। ठंडी का अनुभव कैसे हुआ, ठंडी का अनुभव कैसे हुआ? देखा, सोचा, समझा और अनुभव हो गया। मन बुद्धि दोनों एक साथ हो गए, दोनों एक हो गए, कोई दुविधा खींचातानी नहीं थी, दोनों एक हो गए। जो बुद्धि ने देखा वही मन ने संकल्प किया और अनुभव करा दिया। अगर ठंडी का अनुभव कर सकते हैं तो शांति का अनुभव नहीं हो सकता है, है? शांति का अनुभव नहीं हो सकता है, आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है, प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता है, सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। जरूर हो सकता है। अनुभव का मतलब ही है जहां मन और बुद्धि एक हो जाए। जब तक खींचातानी है दोनों की तब तक युद्ध है। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे युद्ध वाले योगी पसंद नहीं है, लेकिन मोहब्बत वाले योगी चाहिए बाबा को। युद्ध वाले योगी ने, जो अंदर युद्ध कर रहे हैं, ऐसे योगी बाबा को नहीं पसंद है। मोहब्बत वाले योगी पसंद है कि जहां मन और बुद्धि दोनों बच्चों को इतना प्यार से मिला करके चलाते हैं, वो मोहब्बत वाले योगी है। वो हर घड़ी अनुभव की स्थिति को बनाए रखते हैं, ये योगी बाबा को पसंद है ना। तो इसीलिए मन छोटा बच्चा है, बुद्धि बड़ा बच्चा है, मन हमेशा बुद्धि को फॉलो करेगा। इसीलिए बुद्धि को अच्छे अच्छे चित्र दो। आप जब यहां बैठे हैं तो कहा ना स्मार्ट गोल्स देना, आइए मेरेनोवेन, है ना। हाँ अच्छा ठीक है। तो कहने का भावार्थ यही है कि मन और बुद्धि जब एक हो जाता है तो सुख, अति इंद्रिय सुख का अनुभव होने लगता है, बाबा के साथ का अनुभव होने लगता है। हाँ, बाबा को खाली ये नेत्र नहीं देख रहे हैं, लेकिन अंतर चक्षु से भी देख करके, जो बाबा के बातों को याद करते हुए, बाबा के गुणों को याद करते हुए उसको महसूस करते जाएं, तो योग में कितना समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति की याद में बैठा है, आंखें खुली है, जैसे उनका चित्र सामने है, तो उसके साथ का जो दिन देखता है, या साथ के बातें घटनाएं देखता है, साथ बिताए हुए पल देखता है, तो खो जाता है कि पास में से कोई गुजर जाता है तो भी पता नहीं चलता है। है ना। तो व्यक्ति की याद में अगर पता ही नहीं चलता है कितना टाइम वहां बैठ गए, कोई पास में से गुजर गया तो भी पता नहीं चला, कोई पूछता है तो भी मालूम नहीं पड़ता है, जब ऐसे ऐसे करते तब ध्यान टूटता, अरे कहां हो, तो कहते किसकी याद में खोए हुए थे। तो यही तो बाबा की याद भी तो ऐसी है कि बाबा को देखते हुए बाबा के प्यार में समा जाए, बाबा के एक एक गुणों के अंदर समाते जाए, बाबा के एक एक गुणों को महसूस करते जाए, फिर देखो योग कितना सहज हो जाता है और चलते फिरते उठते बैठते देही अभिमानी बन करके याद करना भी आसान हो जाएगा। तो इसको कहते हैं देही अभिमानी स्थिति, जहां कर्मेंद्रिय को यूज करते हैं और यूज करते हुए उसके द्वारा वो प्रवाह फैले, और आत्म अभिमानी मतलब आत्म समझ करके जब बैठते हैं तो सातों गुणों का स्वरूप हो जाता है और एक ऐसा ओरा क्रिएट हो जाता है हमारे आसपास लाइट का, कि जिस ओरा के अंदर लाइट का जैसे वो प्रभा मंडल हो जाता है और उस प्रभा मंडल में हम स्वयं को देख रहे हैं और इतनी सुखद फीलिंग में जैसे समाते जाते हैं। तो ये है आत्माभिमानी स्थिति। क्लियर क्लियर। अभी तीन दिन की भट्टी में इसी को बेस बनाना, अगर नींद भी आ रही है तो अच्छे अच्छे चित्र देखना चालू करो, कोई ना कोई चित्र देखना चालू करो, चार धाम के ही या पांच स्वरूप के ही चित्र को देखना चालू करो, चित्र देना शुरू करो और देखते हुए उसमें उसी अनुसार संकल्प चलाना शुरू करो तो नींद उड़ जाएंगी फिर। ठीक है अब तो कोई दुविधा नहीं, अब तो जो संकल्प मिलता है, जो स्वमान मिलता है, उस स्वमान का मिलकर के अभ्यास कर, तो क्या है जो बाबा कहते हैं संगठन में जो करते हैं उसका बहुत जल्दी महसूसता अनुभव होने लगता है, जो दूर बैठे आत्माओं को भी आप सहज ही उसको पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए ये संगठन में जितना किया तो एक दूसरे को भी बल मिलता है, अगर एक दूसरे का एक दूसरे की अगर इधर उधर हो भी गई मन बुद्धि तो क्या होगा, संगठन की शक्ति से वापस आ जाती है वो। ठीक है अच्छा ऑप्शन। दिल है कि जिसमें फीलिंग्स है, भावनाएं, एक्चुअली मन के अंदर है, मन मन में फीलिंग्स उत्पन्न होती है, जैसा संकल्प करेंगे ना संकल्प के साथ साथ वो फीलिंग्स उत्पन्न होंगी, इसलिए अंतर्मुखी स्थिति कैसे अचीव किया जा सकते हैं। अंतर्मुखी उसको कहते हैं, बहुत सुंदर मुझे गुलजार दादी की एक बात याद आती है, एक बार दादी ने बहुत सुंदर बताया था कि अंतर्मुखी क्यों कहते हैं, तो मुख जो है मुख्य इंद्रियां ये मुख पर है, आंखें भी है, नाक भी है, मुख भी है, कान भी है, सोचने की क्षमता भी है, समझने की, तो सारी इंद्रियां जो है मेन मेन वो मुख पर है। तो अंतर्मुखता माना जब उन सारी इंद्रियों को भीतर की ओर ले चले, है ना, भीतर की ओर ले चले तब उसको कहते हैं अंतर्मुखी। बाह्य मुखता माना जब सारी इंद्रियां बाह्य दुनिया में लगी हुई है तो बाह्य मुखी को हमेशा कहते हैं कि वो गलती करता है, मिस्टेक्स करता रहता है, और बाह्य मुखी इसीलिए दुखी होता है, और अंतर्मुखी सदा सुखी, क्योंकि उस समय वो एक जैसे कहा जाता है कि बीज होता है ना जिसके अंदर सारी पोटेंशियल होती है, सारे वृक्ष की पोटेंशियल उसके अंदर समाई होती है उस बीज के अंदर, ऐसे ही जब हम अंतर्मुखी बन जाते हैं तो जैसे आत्मा के अंदर ये सारी कर्मेंद्रिय की जो पोटेंशियल है वो भी जैसे उसके साथ समा जाती है, तो इसीलिए वो सुख का अनुभव करता है, वो बहुत पावरफुल स्टेज होती है अंतर्मुखता, है ना। अच्छा तो दो मिनट बाबा को याद करेंगे। कितना समय देही अभिमानी स्थिति में रहा जा सकता है? क्या होता है, क्योंकि हमें देह अभिमान का अभ्यास ज्यादा है, इसलिए बीच बीच में वो बातें हमें दुनिया की बातें खींचेगी और वापस ले जाएंगे। लेकिन जितना अटेंशन रखते हैं, है ना, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि अपने पहरेदारों को, अटेंशन और चेकिंग के पहरेदारों को क्या करो, टाइट करो। तो अगर मन चला भी जाता है तो वापस कुछ क्षण के अंदर ही अलर्ट होकर के उसको वापस ले आओ। अगर चला गया, मानो देह अभिमान के प्रवाह में चला गया, तो फिर उसको ले आना भी हमें, तो जितना ये अभ्यास करेंगे वापस उसमें स्थित कर दो। फिर अगर चला गया फिर लेके जितना उसको लाकर वापस स्टेबलाइज करने का अभ्यास करते जाएंगे, उतना ज्यादा समय बिताना शुरू हो जाएगा। फिर उसमें रहना आसान हो जाएगा। उसमें दादी जानकी हमेशा यही कहती है, दादी जानकी ने जो प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया अपने जीवन में, उन्होंने अपना एक बार अनुभव सुनाया था कि जो सुबह 4 से 8 का समय होता है, माना अमृत वेले से लेकर के मुरली क्लास पूरा होने तक, तो दादी का ये अभ्यास था कि दादी ये 4 घंटा जब लंदन में होती थी तो मौन रहती थी और उस समय विशेष ये देखती थी कि हमारी देही अभिमानी स्थिति कितना, अंतर्मुक्ता की स्टेज हमारी कितना है, और उसी में रमण करना उन्होंने जैसे सीखा था। और जितना उसमें रमण करने लगे थे तो कहा कि उसी से मेरा ये देही अभिमान, फिर बाद में सारा दिन, ये फाउंडेशन अगर पक्का हो गया तो सारा दिन भी फिर ये अनुभव हमें खींचता रहेगा, याद आता रहेगा हमें। तो फालतू बहस में, किसी से बातचीत में हम ज्यादा जाएंगे नहीं, तुरंत हमें स्मृति आ जाएंगी और वापस अपने आप को समेट लेना आसान हो जाएगा। तो सुबह का समय जो है, जितना हम अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे उतना ये पक्का होता जाएगा। ठीक है, ओके।
मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाए, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं।
हम सभी दीदी को बहुत बहुत दिल से एक हाथ की ताली बजा के धन्यवाद देंगे। और उसका जो चित्र बताया दीदी ने, तो आपने क्या चित्र देखा जब दीदी ज्ञान सुना रही थी? आपको क्या बनाया दीदी ने? कल से हम एक अभ्यास कर रहे हैं उषा दीदी, कि जब लेसन हुआ उसके दौरान हमने क्या सीखा, क्या बनाया आपको मन बुद्धि को जोड़ के? हाँ, उससे आप क्या बने? बाबा एक शब्द कहते हैं अखंड, उसको अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी कहते हैं। ठीक है ना दीदी? जब मन बुद्धि आपस में विरोधी होते हैं तो हमारी खंडित भावनाएं, खंडित प्रश्नें, हमारा ये जो है ना, ये व्यवस्थित नहीं दिखता है। तो दीदी ने आपको अखंडता दे दी, इससे अच्छा क्या होगा? तो ऐसे फूल जो ज्ञान के रत्न हमें दिए, हम बहुत बहुत दिल से थैंक यू कहते हैं दीदी। थैंक यू। ओम शांति।